ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद जुबैर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है और ये बड़े गर्व की बात है कि अगले वर्ष 26 जनवरी को संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर कई गतिविधियां शुरू हुई हैं जो साल भर चलती रहेंगी। श्री मोदी ने कहा कि संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए विशेष वेबसाइट constitution75.com बनाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। श्री मोदी ने लोगों से महाकुंभ में भाग लेकर एकता के संकल्प को मजबूत करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश वर्ष 2024 में फिल्म जगत की कई महान हस्तियों की 100वीं जयंती मना रहा है। श्री मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करने के लिए फिल्म और मनोरंजन की दुनिया से जुड़े लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर बैठक यानी वेव्स समिट का आयोजन अगले वर्ष भारत में होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वेव्स शिखर बैठक के दौरान मीडिया और मनोरंजन उद्योग के दिग्गज तथा सृजनात्मक जगत से जुड़े लोग भारत आएंगे। उन्होंने भारत के मनोरंजन और क्रिएटिव उद्योग से वेव्स शिखर बैठक का हिस्सा बनने का अनुरोध किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना के जवानों को सैन्य रणनीति और कौशल में कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के मूल्यवान योगदान की सराहना की है। श्री सिंह कल मध्य प्रदेश के महू में थल सेना के 3 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों आर्मी वॉर कॉलेज, इन्फेंट्री स्कूल तथा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग के दौरे पर थे। उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन आज व्यापार तथा उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बजट पूर्व परामर्श करेंगी। श्रीमती सीतारामन के संसद में लगातार 8वीं बार बजट पेश करने से 1 महीने पहले होने वाली ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के संकेतों से जूझ रही है। पिछले 3 वर्षों में मजबूत वृद्धि के बाद चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई है, जिसमें राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों पर दबाव बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से कतर के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। दक्षिण कोरिया में विमान दुर्घटना में मृतकों की संख्या 179 हो गई है। जेजू एयरलाइंस के विमान में 181 लोग सवार थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस विमान हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं दक्षिण कोरिया के लोगों के साथ हैं। फुटबॉल में पश्चिम बंगाल ने कल हैदराबाद के जीएमसी बालियोगी स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में गत चैंपियन सर्विसेज को 4-2 से हराया। प्रो कबड्डी लीग यानी पीकेएल के 11वें सीजन मुकाबले के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता। नेपाल में चितवन के सौराहा में 5 दिनों का 18वां हाथी और पर्यटन उत्सव चल रहा है। देशी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक चितवन राष्ट्रीय उद्यान में जमा हो रहे हैं। हाथी और पर्यटन उत्सव अंग्रेजी नववर्ष तथा क्रिसमस को मनाने तथा क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी देर रात और तड़के बहुत घने कोहरे की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।